प्रगतिशील काव्यधारा। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक समाप्त होते होते स्वतंत्रता आंदोलन अनेक सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक नई ऊर्जा से भर उठा था। स्वाधीनता आंदोलन जो अब तक प्रमुखतः उच्च वर्ग एवं शिक्षित मध्यम वर्ग का आंदोलन था तथा जिसके लक्ष्य मूलतः राजनैतिक थे, अब किसान आंदोलनों एवं मजदूर आंदोलनों में आए नए उभार के कारण अपने लक्ष्य को ज्यादा विस्तृत कर रहा था। स्वतंत्रता अब राजनैतिक पराधीनता से मुक्ति तक सीमित न होकर सामाजिक और आर्थिक मुक्ति से जुड़कर एक महास्वप्न का रूप ग्रहण कर रही थी। इसी पृष्ठभूमि में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारों के प्रति युवकों का रुझान बढ़ा था। भरत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेतृत्वकर्ताओं में इसे देखा जा सकता है। समता मूलक समाज एवं राज्य की स्थापना की आकांक्षा आजादी के महास्वप्न को एक नया रंग दे रही थी। सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में हो रहे उपयुक्त परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य रचना के क्षेत्र में भी पड़ा। छायावाद की विशिष्ट व्यक्तिवादी मनोरचना और अत्यंत कलात्मक भाषा एक रीति बनकर उभरी, जो तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनों को आत्मसात एवं अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं थी। 1935 ईस्वी के अंत में पेरिस में कुछ पढ़े लिखे भारतीय नवयुवकों ने मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की एक शाखा हिंदुस्तान में भी खोली। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के सभापतित्व में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसमें तब के अनेक महत्वपूर्ण कवि, लेखक एवं विचारक शामिल हुए। रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी संगठन से जुड़े। यहीं से हिंदी में प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य की चर्चा प्रारंभ हुई। प्रगतिशील काव्य वस्तुतः साधारण जनता का काव्य है। प्रगतिशील कवियों की राष्ट्र की अवधारणा सीधे सीधे देश के गवई और नगरी, किसान, मजदूर एवं नौकरी पेशा, निम्न मध्यम वर्गीय जनों से जुड़ी थी। वे सुसंस्कृत अभिजनी एवं सामंती कुलीन अभिरुचियों में सीमित कविता के विपरीत जनोन्मुखी कविता को श्रेष्ठ मानते थे। उनके लिए कविता का लक्ष्य समाज का वास्तविक चित्रण करना था। वे सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भागीदारी के पक्षधर थे। प्रगतिशील कवियों ने समाज को उसके ठोस और वास्तविक रूपों में देखना और चित्रित करना प्रारंभ किया। ये कवि वस्तुतः समाज से अभिन्न थे, वे स्वयं जनता का जीवित हिस्सा थे। इस कारण समाज की ठोस वास्तविकताएं, दुख, शोषण, अन्याय, भेद, संघर्षशीलता और बेहतर भविष्य की आकांक्षा उनकी कविता में स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुई है। प्रगतिशील कवि अपने सामाजिक अनुभवों को मार्क्सवाद की सुसंगत वैचारिकता के परिप्रेक्ष्य में विवेचित करते थे। वे देख पा रहे थे कि जनता के दुखों और उसकी निम्न स्थिति के कारण दैवी न होकर ठोस सामाजिक आर्थिक संरचना में निहित है। वे दुनिया को संपन्न और विपन्न, शोषक और शोषित, स्वामी और दास, भूस्वामी और भूमिहीन श्रमिक, पूंजीपति और मजदूर के दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित देख रहे थे। उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से विपन्न, शोषित और वंचित वर्ग से थी। पूर्व में केशव प्रसाद मिश्र की जाड़ा और निर्धन, हीरा डोम की एक अछूत की शिकायत और निराला की तोड़ती पत्थर में इसकी ताकतवर झलक मिली थी। प्रेमचंद का कथा साहित्य इसका विशाल कोष है। प्रगतिशील कवि समाज में मौजूद वर्ग विभाजन का चित्रण करते थे। वे सामान्य जनता अर्थात किसान, मजदूर, स्त्रियों, शूद्रों पर प्रभु वर्ग अर्थात सामंतों और पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे अन्याय का मार्मिक चित्रण करते हुए उसका विरोध करते हैं। प्रगतिवादी काव्य के लिए शोषण का अर्थ सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं है, वह सामाजिक, राजनैतिक, किसी भी तरह की सत्ता द्वारा किए जा रहे सभी तरह के शोषण को रेखांकित करता है। कहना ना होगा कि प्रगतिवादी कवि शोषित समाज के प्रति संवेदनशील, सहानुभूति परक एवं स्वभावी रवैया अपनाते हैं। निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन सील, रामविलास शर्मा, दिनकर आदि कवियों की अनेक कविताओं में भारतीय समाज के वर्ग विभाजन की स्पष्ट समझ मौजूद है। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, यह बाधा है सूद और आड़त वालों किस नगरी में, जहां मार, काबर, कद्दार, महुआ की फसलें, कृषकों के पौरुष से उपजा कनकन सोना लड़ियों में लदलद कर आकर बीच हाट में बिककर काठों गोदाम में गहरी खो में खो जाता है जा जाकर, और यहां पर राम पदारथ राम निहोरे, बेनी पंडित वासुदेव, बलदेव, विधाता, चंदन, चतुरी और चतुर्भुज गांवों से आ आकर गहने गिरवी रखते, बड़े ब्याज के मुँह में बेबस घुसते, फिर भी घर का खर्च नहीं पूरा कर पाते। राम पदारथ से चतुर्भुज तक के ये चरित्र होरी, घीसु और हल्कू के परिवार का भी काही हिस्सा मालूम पड़ते हैं। हिंदी के प्रगतिशील कवियों ने सभी तरह के सामाजिक अन्याय, शोषण एवं सामाजिक असमानता का विरोध किया है। यह प्रवृत्ति निराला की भिक्षुक व तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में मिलती है। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल ने कविताओं में समाजवादी दृष्टि को वाणी प्रदान की है। दिनकर जैसे कवियों ने विषमताओं का प्रखर चित्रण किया है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक कर ठिठो ठिठो जाड़े की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अंधकार देता मुझको तब आमंत्रण। इस सामाजिक विषमता की जड़ सामंतवाद और पूंजीवाद में है। निराला ने राजे ने फिर रखवाली की शीर्षक कविता में जहाँ इस सामंतवाद की बखिया उखेड़ी है, वहीं कुकर्मुत्ता कविता में गुलाब के फूल को पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि रूप में दिखलाकर रोष प्रकट किया है। अभी सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आ, खून चूसा खाद का तूने अस्सस डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इसी प्रकार केदारनाथ अग्रवाल ने युग की गंगा कविता में शोषक जनों का चित्रण कुछ इस प्रकार किया है। ये कामचोर आराम तलब मोटे तुंदियल भारी भरकम हट्टे कट्टे सब डांगर घुमा करते हैं। प्रगतिशील कवि अपने कविताओं में शोषक समाज को समाप्त करने के लिए सामंतों एवं पूंजीपतियों के विरोध में क्रांति का आह्वान करते हैं। पंत की दुर्त छरो कविता मशहूर है। द्रुत झर्रो जगत के जुड़पत्र गोपाल सिंह नेपाली पूंजीवाद व्यक्तिवाद तथा रूढ़ियों के पतन की भविष्यवाणी करते हैं। होंगे भस्म अग्नि में जलकर धर्म कर्म ओ पोथी पत्रा, और पुतेगा व्यक्तिवाद के चिकने चेहरे पर अस्कतरा। सड़ी गली प्राचीन रूढ़ी के भवन गिरेंगे दुर्ग ढहेंगे, पतित दलित मस्तक ऊंचा कर संघर्षों की कथा कहेंगे, और मनुष्य के लिए मनुष्य के द्वार खुले के खुले रहेंगे। निराला ने अपनी एक कविता में शोषकों की हवेलियों को मजदूरों की पाठशाला बनाने का स्वप्न देखा। आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला। वर्ग संघर्ष की झलक प्रगतिशील कवियों की अनेक कविताओं में देखी जा सकती है। केदारनाथ अग्रवाल की डंका बजा गांव के भीतर और नागार्जुन की हरिजन गाथा इसके उचित उदाहरण है। सामंती सरकार द्वारा किए गए गोली कांड की स्मृति में लिखी गई शमशेर बहादुर सिंह की कविता यह शाम है भी इसी सिलसिले में देखी जा सकती है। यह शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का, लपक उठी लहू भरी दरातियां की आग है, धुआं धुआं सुलग रहा ग्वालियर के मजदूर का हृदय, गरीब के हृदय टंगे हुए की रोटियां लिए हुए निशान लाल लाल जा रहे की चल रहा लहू भरे ग्वालियर के बाजार में जुलूस, जल रहा धुआं धुआं ग्वालियर के मजदूर का हृदय। प्रगतिवादी कवि समाज में शोषक वर्गों द्वारा विभिन्न आधारों पर किए जा रहे भेदभाव ऊंच नीच की भावना को अमान्य करते हैं। वे मानते हैं कि जाति धर्म भाषा नस्ल रंग भेद पद प्रभाव आर्थिक स्थिति का कुल या हैसियत को आधार बनाकर किया जाने वाला विभाजन मूलतः जनता की शक्ति को बांटने के लिए किया गया षड्यंत्र है। वे सभी मनुष्य जन को एक समान मानते हैं। प्रगतिवादी कवि भाग्य और परलोक जैसी सत्ता को नहीं मानते, फलतः वे समाज की भाग्यवादी व्याख्या को अस्वीकार करते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1937 में लिखे झूठे पत्ते मेश्वर के विरुद्ध कठोर है जिसने असमानता पैदा की है। अरे चढ़ते झूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को, यह भी सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का, जिसने अपने ही स्वर को रूप दिया इस घृणित विकृति का। नवीन स्वर रूमानी क्रांतिकारिता लिए हुए है। निराला का स्वर अधिक संयत है। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। प्रगतिशील कवियों का मानना है कि यह समाज व्यवस्था वस्तुतः मनुष्य निर्मित है। समाज में मौजूद अमीरी गरीबी शोषण अन्याय सदाचार दुराचार मनुष्य जनित है। फलतः समतावादी समाज की स्थापना के लिए इस मनुष्य निर्मित व्यवस्था को जनता के पक्ष में मोड़ने के लिए जनता को क्रांति जैसे सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्रगतिवादी कवि शोषित वंचित दलित जनता के संघर्षशीलता में शक्ति देखता है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविता मैंने उसको जब जब देखा इसका उचित उदाहरण है। उनकी एक अन्य कविता में वे लिखते हैं, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ हाथी सा बलवान, जहाजी आंखों वाला और हुआ सूरज सा इंसान, तरेरी आंखों वाला और हुआ एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, माता रही विचार अंधेरा हरने वाला और हुआ, दादा रहे निहार सबेरा करने वाला और हुआ, जनता रही पुकार सलामत लाने वाला और हुआ, सुन ले रही सरकार कयामत ढालने वाला और हुआ। प्रगतिवादी कवि सौंदर्य को सकृता और श्रम में देखते हैं। श्रम में उन्हें अपार सुंदरता दिखाई देती है। यह वह सौंदर्य है जो दुनिया में और अधिक सुंदरता पैदा करता है। अभिजन एवं कुलीन समाज जिस सारे श्रम को घृणित समझता था, ये कवि अपने सौंदर्य बोध को श्रम तक ले जाते हैं। सहज सरल आडंबर रहित और सक्रिय जीवन उन्हें सुंदर लगता है। निराला ने वह तोड़ती पत्थर में श्रमिक स्त्री के रूप एवं श्रम सौंदर्य का पूर्व चित्रण किया। रामविलास शर्मा ने किसान स्त्री का चित्रण कुछ इस तरह खींचा। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती, मांगे से फिर उसे रोकती, वेगी में जब धवा फोड़ती, धीरे धीरे विगई भरती, धवा बांध वह आगे बढ़ती। प्रतिशील कवि कविता को कल्पना जगत से यथार्थ की धरती पर उतार लाए। मानव समाज की ही तरह प्रकृति एवं धरती का चित्रण भी इन कविताओं में सहज होकर किया। धरती और प्रकृति को इन कवियों ने किसानों एवं मजदूरों की निगाह से देखा। यह पर्यटक दृष्टि नहीं अपितु साहचर्य जनित दृष्टि है। त्रिलोचन का धूप वर्णन वस्तुतः किसान दृष्टि का परिणाम है। सघन पीली उर्मियों में बोर, हरियाली सलोनी, झूमती सरसों, प्रकंपित वात से अपरूप सुंदर, धूप सुंदर, धूप में जगरूप सुंदर, सहज सुंदर। प्रगतिवादी कवि अपने गांव, धरती, नदी, पहाड़, पर्वत, पशु पक्षी सभी से साक्षर जनित अपनाया अनुभव करता है। प्रगतिवादी कवि की दृष्टि अपनी धरती पर गई। नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद तथा केदारनाथ अग्रवाल की अनेक कविताओं में धरती के प्रति प्रेम सहज दिखाई देता है। प्रगतिशील कवियों ने प्रेम के सामाजिक रूप की अभिव्यक्ति की है। यह प्रेम रीतियुगीन कवियों के शारीरिक खिलवाड़, छायावादी कवियों के रूमानी प्रेम तथा प्रयोगवादी के कुंठित प्रेम के समानांतर जगत और जीवन की ओर ले जाने वाला सामाजिक प्रेम है। प्रगतिशील प्रेम संबंध को सामाजिक भावना के रूप में देखते हैं। त्रिलोचन कहते हैं, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है, प्यार तुम्हारा। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार प्रगतिशील कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा। वर्ग विभक्त समाज में प्रेम सहज ही नहीं हो पाता। प्रेम वर्ग भेद वर्ण भेद को मिटाता है। इस युग की तरह अन्य प्रवृत्तियों की तरह ही भाषा और शैली में लाक्षणिकता अतिरंजित कोमलता के स्थान पर सहज व्यंग्य प्रधान जगत और जीवन की दिनचर्या से संबंध रखने वाली भाषा ने ले लिया। ग्रामीण अचल की भाषा की गमक सुनाई देने लगी। कहना ना होगा कि भाषा भी कल्पना की दुनिया से जमीनी यथार्थ तक आ गई। प्रगतिवादी कवियों ने छायावाद की मुक्त छंदी परंपरा का अनुसरण किया, परंतु अनेक कवियों ने भारतीय द्वियुगीन और द्विवेदीयुगीन कवियों की तरह लोक प्रसिद्ध धुनों के गीत भी लिखे। केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों ने आल्हा और लांगुड़िया आदि लोकगीतों का बखूबी इस्तेमाल किया। वहीं इन कवियों ने नए शिल्प वाले गीतों की भी रचना की। प्रगतिशील कवियों ने व्यक्तिवादी यथार्थ को बंद कमरे से निकालकर उसे जन जीवन के बीच प्रवाहित किया। जीवन और साहित्य के मूल्यों, सौंदर्य बोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसकी रचना से जोड़ा। साथ ही भाषा का नवीन प्रयोग कर समाजवादी विचारधारा का प्रसार किया। इन विशेषताओं के कारण प्रगतिवादी साहित्य नवीन सामाजिक शक्तियों का प्रेरक माना जाता है।